हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अगले आज के बुधवार के सत्संग कार्यक्रम में। पिछले बुधवार को हमने श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 18 तक चर्चा की थी। तीन श्लोक हमने लिए थे और संजय ये श्लोक धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और इन तीन श्लोकों में क्या सुनाया संजय ने, याद है? शंखनाद, कितने योद्धाओं ने पांडवों के पक्ष से शंख बजाए? 18। और शुरुआत इन शंखनाद की हुई, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, तत्पश्चात अर्जुन ने देवदत्त नामक, फिर भीमसेन इन्होंने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया, युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय। इस श्लोक में संजय कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के विषय में, अनंत विजयन राजन। युधिष्ठिर महाराज को राजा कहा गया है। यदि आपको याद होगा कि जब धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा था कि मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो सबसे पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों के विषय में बताना प्रारंभ किया संजय ने। और धृतराष्ट्र के पुत्रों में से दुर्योधन के विषय में कहना शुरू किया। और यदि आपको याद है कि भगवद गीता का जो दूसरा श्लोक है उसमें दुर्योधन के विषय में कह रहे हैं संजय, परंतु दुर्योधन को क्या उल्लेख कर रहे हैं? राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन को राजा कह रहे हैं। तो यदि आपको याद होगा कि हमने इसकी चर्चा की थी कि दुर्योधन को राजा क्यों कह रहे हैं, राजा कौन है उस समय? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र केवल राजा के प्रतिनिधि बने वहां पर बैठे, असली राजा महाराज पांडु। तो दुर्योधन तो राजा नहीं, परंतु संजय दुर्योधन को राजा क्यों कह रहे थे, याद है? हाँ, व्यंग्यात्मक दृष्टि से उपहास कर रहे थे धृतराष्ट्र को, ये बता रहे थे कि ये जो तुम्हारा दुर्योधन है जो राजा बनने के पीछे इतना आतुर है, इसे राज दरबार तो दूर की बात है, राज गद्दी तो दूर की बात है, इसे ये खुद का शरीर भी नहीं मिलने वाला। तो दुर्योधन को व्यंग्यात्मक दृष्टि से राजा कहा, राजा वचनम अब्रवीत। और इस श्लोक के जो पहला वाला श्लोक हमने पिछले बुधवार को लिया, उसमें युधिष्ठिर महाराज अब पांडवों के विषय में जब कहने की बात आई, तो अब संजय पांडवों के विषय में युधिष्ठिर महाराज का जब उल्लेख करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को भी राजा कहते हैं, अनंत विजयम राजन। तो अब प्रश्न है कि युधिष्ठिर महाराज को क्यों राजा कह रहे हैं संजय? हाँ, परंतु वो राजा तो नहीं। हाँ, वो धर्मराज थे, और कुछ? वो राजा बनने वाले हैं आगे चलकर। राजा की परिभाषा दी गई है संस्कृत में, रंजयति इति राजा, जो प्रजा का रंजन करे वो है राजा। तो जो भी व्यक्ति प्रजा का रंजन कर रहा है वो राजा हुआ। तो हस्तिनापुर की जितनी भी प्रजा थी वो सारी प्रजा को रंजन युधिष्ठिर महाराज देते थे हर समय। रंजन का अर्थ है आनंद। तो युधिष्ठिर महाराज के कारण सारी प्रजा को आनंद मिलता, इसलिए इस दृष्टिकोण से युधिष्ठिर महाराज राजा हुए, क्योंकि वो रंजन देते थे, हालांकि वो राजपद पर नहीं थे। और एक कारण यह दिया गया है कि युधिष्ठिर महाराज ने इस युद्ध से पहले राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने इस युद्ध से पहले ही कर दिया था, जो कि सुनिश्चित कर रहा था कि युधिष्ठिर महाराज राजा अवश्य ही बनेंगे। इसलिए यहां पर जब युधिष्ठिर महाराज को संजय राजा कह रहे हैं तो वो उपहास करते हुए नहीं, व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सही तरीके से धृतराष्ट्र को यह संकेत दे रहे हैं कि ये असली राजा बनने वाले हैं। अब जब सभियों ने अपने अपने शंख बजा दिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, इनका पांचजन्य शंख जब बजा, उसके पश्चात सभी योद्धा, 17 योद्धा, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए, तो ये सारे जो शंखनाद हुई, इतने प्रचंड मात्रा में तुमुल कहते हैं, बहुत जोर से ये जो नाद हुआ, शंखनाद, तो इसका परिणाम अलग अलग अनुभव किया गया। दोनों पक्षों में इस शंखनाद का अनुभव अलग अलग किया गया। तो ये श्लोक इसमें इसके विषय में कहा गया है, सघोषो धार्त्र राष्ट्रानाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्त्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्त्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अब यहां पर बताया गया है कि पृथिवीं चैव, कि सारे पृथ्वी में यह शंखनाद सुना गया। सोचिए, कुरुक्षेत्र में, आप लोग में से कितने लोग कुरुक्षेत्र गए हैं, कितने लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र कहां है? हाँ? जानते हैं कुरुक्षेत्र कौन से राज्य में है? हरी का आना, तो हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। तो वहां पर शंखनाद हुआ और पूरी पृथ्वी में वो शंखनाद, पृथ्वीम चैव, पूरी पृथ्वी में तुमुलो अभ्यु नादयन, उसका नाद पूरी पृथ्वी में सुनाई दिया। तो सोचिए, यहां पर संजय धृतराष्ट्र को एक संकेत दे रहे हैं कि क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय की शक्ति कहां पाई जाती है, किसी भी व्यक्ति की शक्ति कहां पाई जाती है। कोई योद्धा है, कोई क्षत्रिय है, कोई उसके बाहुओं में, उसके भुजाओं में और उसके पूरे शरीर में, परंतु क्या कभी आपने सुना है कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जिसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया होठों से, हा? शक्ति का प्रदर्शन कभी होठों से देखा गया है किसी के? एक व्यक्ति है, कौन है? श्याम सुंदर कृष्ण। उनके होठों में इतनी शक्ति है कि जब बांसुरी की नाद निकलती है, स्वर जब वो बांसुरी बजाते हैं, तो सारे पृथ्वी में हलचल मचती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं और विशेष रूप से जब वृंदावन में गोपियां और ब्रजवासी गण जब वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली सुनते तो वहां पर सब कुछ सब काम ठप हो जाता। आजकल की भाषा में कहेंगे कर्फ्यू, बंद, वृंदावन बंद। और केवल एक ही वस्तु सब जगह पर भ्रमण करती और वो बांसुरी की ध्वनि। तो यहां पर वही भगवान श्री कृष्ण अपने उन्हीं होठों से अपना पांचजन्य शंख बजाना प्रारंभ किए। भगवान जो भी बजाते हैं, चाहे वो बांसुरी बजाए, चाहे वो गिटार बजाए या चाहे शंख बजाए, जो भी बजाए, भगवान जो भी बजाते हैं उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जैसे कि भगवान जब द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो सारे द्वारकावासी इतने उत्सुक थे, भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका नगरी में आ रहे हैं युद्ध के पश्चात, तो सारे इतने उत्सुक थे द्वारकावासी और सारी पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से। तो भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपना शंख बजाया और बहुत ही सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि भगवान जब अपना शंख बजाए तो भगवान की दशा कैसी हुई और शंख की दशा कैसी हुई। कि भगवान जब अपना शंख हाथ में लिया उन्होंने और उस सुंदर दृश्य को सुखदेव गोस्वामी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतने सुकोमल अपने हस्तों से भगवान ने उस शंख को अपने हाथ में लिया तो मानो ऐसा लग रहा था शंख एकदम उजला उजला सफेद, दूध के समान उजला सफेद वो शंख, पांचजन्य शंख भगवान के हाथों में। और भगवान के हाथ कैसे श्याम वर्ण, तो वो कॉन्ट्रास्ट ऐसा लग रहा था कि मानो बादलों में बिजली गरज रही हो। इसे कई बार आपने देखा होगा कि घने बादल, बारिश के घने बादल, उसमें जब बिजली कड़कती है तो एकदम चमकदार वो बिजली उन बादलों में दिखती है। तो यहां पर भगवान के हाथों के बीच में ये शंख, ये ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो घने बादलों के बीच में सफेद चमकदार बिजली। और भगवान ने जैसे ही अपने होठों पर शंख को छुआ, अपने होठों से शंख को छुआ बजाने के लिए, तो उस जगह पर वो पूरा शंख जो है वो गुलाबी हो गया, पिंक गुलाबी हो गया वो पूरा शंख। गुलाबी कैसे हो गया? भगवान के जो रक्त रंजित होंठ, भगवान के होंठ गुलाबी जो हैं, भगवान के होठों की जो गुलाबी है वो, और भगवान के होंठों की गुलाबी कोई पान खाने से नहीं होती, ये मत समझना कि भगवान ने अपने होंठ लाल किए पहले कहीं किसी पान पट्टी पर जाकर द्वारका में। तो कलकत्ता क्या वो कोई ब्रांड है क्या पान? अच्छा, वो लाल करता है क्या? इसलिए भगवान के होठों का गुणगान किया गया है कि भगवान के होठ ऐसे हैं कि इतने मुहुश्चुंबितम रक्त, ये कहा गया है, हम दामोदराष्टकम में गाते हैं कि जब भगवान मुस्कुराते हैं तो भगवान के होठों से एक प्रकार की सुगंध निकलती है। अब देखिए, हम लोग यदि मुस्कुराएं, यदि दिन में 3 बार दांत नहीं घसे हैं, तो व्यक्ति को 2 फीट और दूर जाना पड़ता है। परंतु जब भगवान मुस्कुराते हैं तो सुगंध निकलती है भगवान के मुस्कुराहट से, और वो सुगंध जब बांसुरी में ध्वनि में परिणित होकर निकलती है तो वो न केवल कानों के लिए बल्कि ब्रजवासियों के हर इंद्रिय के लिए वो उन्हें पूर्णता देती है। इसलिए भगवान जब अपने उन गुलाबी होंठों से उस शंख को स्पर्श किया भगवान ने, तो वो शंख धीरे धीरे गुलाबी होने लगा और भगवान जिनका चेहरा एकदम श्याम वर्ण, उजला श्याम वर्ण का चेहरा भगवान का, तो वो जो गुलाबी शंख था वो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि कोई गुलाबी कमल, जैसे यहां पर इस चित्र में आप देखोगे राधा और कृष्ण वो कमल पर, कमल के सेज पर बैठे हुए हैं, परंतु वो कमल कौन से रंग का है? गुलाबी रंग का, पिंक। और ये गुलाबी शंख पूर्ण प्रकार से गुलाबी नहीं हुआ, बीच बीच में थोड़ा सा सफेद था, तो वो एकदम कमल के समान दिख रहा था। तो कई द्वारकावासी अचरज में पड़ गए कि भगवान ने आज कमल हाथ में लिया और शंख की आवाज निकाल रहे हैं वहां से, क्योंकि शंख गुलाबी रंग का कभी देखा नहीं गया, शंख सफेद होता है, गुलाबी रंग का कोई शंख नहीं देखा गया। इसलिए जब द्वारकावासियों ने देखा कि आज भगवान, देखिए गुल अपना गुलाबी कमल को हाथ में लिए शंख की ध्वनि निकाल रहे हैं, तो कई द्वारकावासी ने, उन्होंने आपस में चर्चा की तो उन्होंने कहा अरे भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक बार बहुत सालों बाद कलकत्ता में जो राधा गोविंद मंदिर, बचपन में वो जहां जाया करते थे तो अपने कुछ शिष्यों के साथ गए वहां पर, तो वहां पर जब गए तो प्रभुपाद दर्शन ले रहे थे, तो प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद वो बांसुरी भगवान की उल्टी लगाई हुई है, उसे सीधी कर। प्रभुपाद ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा लेकिन उल्टी बांसुरी है, उल्टी बांसुरी कैसे बजाएंगे? प्रभुपाद ने कहा वो तुम्हारे तरह नहीं है, कृष्णा कैन प्ले फ्लूट फ्रॉम बोथ साइड्स, प्रभुपाद के वो दोनों तरफ से बांसुरी बजा सकते हैं। हाँ, जय प्रभुपाद। तो यहां पर द्वारकावासी, इन्होंने सोचा कि भगवान चाहे शंख हाथ में लें, चाहे बांसुरी हाथ में लें, चाहे कमल हाथ में लें, भगवान जो ध्वनि निकालना चाहे। तो यहां पर संजय संकेत दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इनके होठों में कितनी शक्ति है देख लो, पांडवों के, ये पांडु सेना के होठों में कितनी शक्ति है कि केवल शंख बजाया इन्होंने और सारी पृथ्वी में इसका, इसकी गर्जना सुनाई दे रही है। और जब कौरवों ने शंख बजाया तो तब इन्होंने ये नहीं कहा, जब कौरवों ने शंख बजाया तो संजय ने ये नहीं कहा पृथ्वीं च तुमलो अभ्युनादयन, ये नहीं कहा, परंतु यहां पर पांडवों की शंखनाद के संदर्भ में कह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को ये संकेत दे रहे हैं कि अभी तो केवल होंठों से ये ध्वनि निकली है, इसका नाद इतना बड़ा है। तो सोचो जब अर्जुन अपने हाथों से बाण निकालेंगे, अपने धनुष से बाण निकालेंगे, तब क्या होगा? इतनी शक्ति यदि होठों में है तो उनके भुजाओं में कितनी शक्ति होगी? तो केवल इससे धृतराष्ट्र को वो संकेत दे रहे हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि संजय ने कौन कौन सी जगह पर धृतराष्ट्र को संकेत दिए हैं अर्जुन के विजय के? बहुत जगहों पर, यहां पर भी हम देखेंगे। और केवल इतना ही नहीं कि सारी पृथ्वी में ये शंखनाद सुनाई दिया, परंतु विशेष रूप से संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं हृदयानि वेदारयत, कि हृदयों को विदीर्ण करने वाली ये ध्वनि शंख की, ये फैल रही थी सारे पृथ्वी में। और किनके हृदयों की? सघोषो धार्त्र राष्ट्राणाम, हे धृतराष्ट्र आपके पुत्रों और कोई नहीं। और जो पांडवों की सेना थी उनमें से किसी योद्धा के हृदय के बारे में नहीं कहा गया यहां पर, केवल धार्त्र राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में, धृतराष्ट्र से संबंधित जो भी वहां पर खड़े हैं उनके हृदयों में ये शंख ध्वनि जब पहुंची तो विदीर्ण, विदीर्ण का अर्थ है, कोई जानता है? भय, भय उत्पन्न किया, यही ध्वनि इनके हृदयों में भय उत्पन्न की। तो अब प्रश्न है कि यदि इन सारे शंखनाद को दिव्य शंखों कहा गया है, यदि आपको याद है कि जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन इत्यादि इन्होंने जब अपना शंख बजाया तो इनके शंख के विजय में विषय में कहा गया है दिव्य शंखों प्रदद्मतु, दिव्य शंख बजे। तो यदि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये शंखनाद यदि दिव्य है और सभी के मुख से निकला हुआ अर्जुन इत्यादि के दिव्य है, तो फिर ये हृदयों को विदीर्ण कैसे कर रहा था ये शंखनाद? एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि दिव्य है तो दिव्यता उत्पन्न होनी चाहिए, है कि नहीं? परंतु भय क्यों उत्पन्न हो रहा है धृतराष्ट्र के पुत्रों में? वही शंख की ध्वनि जब बाकियों ने सुनी तो उनके अंदर दिव्यता उत्पन्न हुई, परंतु जब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सुनी तो उनके हृदय विदीर्ण हुए, भय से प्राविभूत हुए। ऐसा क्यों? और इसका कारण हमारे आचार्य बताते हैं कि इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो एक भावना है हम सबके हृदयों में, भय, तो आज हम भय के विषय में कुछ चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि क्यों धृतराष्ट्र के पुत्रों में भय उत्पन्न हुआ और वही ध्वनि सुनकर पांडु के पुत्रों में सुरक्षा, कि धृतराष्ट्र के पुत्र इनसिक्योरिटी फील किए और पांडु के पुत्र सिक्योरिटी फील किए वही शंखनाद को सुनकर। शंखनाद वही, परंतु दोनों में अलग अलग प्रकार की भावनाएं देखी गई। सबसे पहले जब हम भय के विषय में चर्चा करते हैं तो भय दो प्रकार के होते हैं, एक है स्थूल रूप का भय और एक है सूक्ष्म रूप। स्थूल रूप में शारीरिक स्तर पर भय होता है, जैसे कि छोटा बच्चा वो अपने शरीर को बचाना चाहता है, और बड़े बच्चे भी अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, इसलिए एक प्रकार का भय रहता है कि मेरे शरीर को कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए तो हम क्या कुछ नहीं करते इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे देखिए हम किसी घर में रहते हैं तो घर में रहने का सबसे पहला प्रयोजन क्या है? इस शरीर को एक ऐसी जगह पर रखना जहां पर यह शरीर सुरक्षित रहे। हम इस शरीर में अंदर भोजन डालते हैं ताकि शारीरिक रूप से ये शरीर स्वस्थ रहे। तो कोई व्यक्ति भोजन भी खा रहा है तो मूल प्रयोजन है कि वो इस शारीरिक भय से दूर होना चाहता है, कि यदि भोजन खाएगा नहीं तो फिर होगा क्या? कमजोर, कमजोर यदि होगा तो फिर बीमारी होगी, बीमारी होगी तो फिर शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर ही खत्म हो जाएगा तो फिर जीने का क्या मकसद अरे पहले ही मर गया, फिर जीने का क्या मकसद? तो शारीरिक रूप पर यह है स्थूल भय, और इसमें एक श्रेणी है कि भय बना रहता है कि कुछ खो न जाए, जो मेरे पास है वो खो न जाए मुझसे। अब वो सबसे पहले तो शरीर, और फिर शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति वस्तु वो खो न जाए, इसका भय हर समय बना रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि इस पूरे संसार में इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, इसके पीछे एक मूल भावना क्या है सबकी? भय। कि यदि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो वहां पर डांट मिलेगी, नहीं पहले घर में डांट मिलेगी, है ना? स्कूल नहीं जाऊंगा तो घर में, तो घर की डांट के भय से बच्चा स्कूल जाता है, और स्कूल में वहां पर भी भयभीत रहता है, क्योंकि वहां पर यदि उसने होमवर्क नहीं किया, यदि टेस्ट में उसे ठीक से मार्क्स नहीं मिले, फेल हो गया, जो भी हो गया, तो स्कूल में बहुत भयभीत रहता है एक विद्यार्थी। हमें याद है कि जब स्कूल में थे तो कई ऐसे पीरियड आते थे जिसमें इतना भय लगता था, क्योंकि हिटलर से कम नहीं थे वो टीचर, और वो हिटलर के बारे में सिखाते थे। हम कहते सिखाने की क्या जरूरत है ही एक सामने। तो विद्यार्थी स्कूल में भयभीत रहता है शिक्षकों से, और फिर सब जगह पर उसे बताया जाता है कि यदि यहां पर पास नहीं करोगे तो फेल हो जाओ। वो तो सही बात है, पास नहीं होगे तो फेल हो, फेल हो जाओगे तो फिर उसी क्लास में रहना होगा। तो कई बार लोग, अरे उसी क्लास में फिर से, वाह बहुत अच्छा है। परंतु फिर कई बार विद्यार्थियों को यह भय दिया जाता है कि उसी क्लास में रहोगे परंतु तुम्हारे सारे मित्र वो दूसरी क्लास में चले जाएंगे, इसका भय नहीं तुम्हें? हाँ वो तो है, सारे मित्र दूसरी क्लास में चले जाएंगे, तो फिर तो उस भय से फिर वो पढ़ाई करता है। फिर मेरा एक मित्र था, वो कहता था अरे देखो हमारे माता पिता कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं हमारे ऊपर, कम से कम इससे तो डरो, पढ़ो, इतना पैसा वो खर्चा कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं पिताजी, इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना स्कूल का फीस भर रहे हैं, आजकल तो कितने लाखों रुपए भरने पड़ते हैं, तो ये एक डर पैदा किया जाता है। और फिर यदि पढ़ लिख कर बच्चा होनहार हुशार नहीं बनेगा तो नौकरी, नौकरी कौन देगा? इसलिए बचपन से ही बच्चे को बार बार पूछवाया जाता है, बोलो क्या बनोगे बड़ा होके बेटा, बेटा क्या बनोगे? बोले जैसे एक बार एक एक पिताजी वो अपने पुत्र को कह रहे थे कि बेटा अगर तुम्हें एसएससी में ना 75% आ गया तो मैं तुम्हें फोर व्हीलर लाके दूंगा। उनका फोर व्हीलर 75%? तो उसने पूछा यदि पिताजी 75% नहीं आया, अगर 60% आया, तो 60% आएगा तो टू व्हीलर लाके देंगे, मोटरसाइकिल, तो वो भी अच्छा है, कॉलेज में काम आई। लेकिन यदि पिताजी मैं फेल हो गया तो मैं थ्री व्हीलर लाके दूंगा, फिर चलाते रहना ऑटो रिक्शा। तो ये भय रहता है कि यदि ठीक से पढ़ाई नहीं होगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, और यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्योंकि सबसे पहले वो देखा जाता है नौकरी है कि नहीं, यदि नौकरी नहीं तो वो नहीं। तो फिर इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि सब कुछ इस भय पर ही निर्भर है, इस सारी दुनिया भय पर चल रही है। तो यहां पर शारीरिक स्तर पर भय और फिर वो मानसिक स्तर पर आ जाता है कि मानसिक स्तर पर भय रहता है कि हमारे शरीर को कुछ नहीं हो रहा, परंतु एक मानसिक भय बना रहता है कि मेरे अहंकार को ठेस न पहुंचे, मेरे मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई नया शर्ट खरीदा 500 रुपए का। आजकल 500 रुपया महंगा है कि सस्ता है? मीडियम है, 1000। ठीक है, तो 1000 रुपए का शर्ट खरीदा और 1000 रुपए के शर्ट को पहनकर वो जा रहा है, रास्ते पर चल रहा है। तो रास्ते पर जब वो चल रहा है तो अब देखो कहीं पर कोई बागीचा है और गुलाब के फूल उगे हुए हैं और कांटे उसके साथ हैं, और वो चलते हुए वो कांटा अटक गया उसके शर्ट में और हुआ क्या, फाड़ दिया का शर्ट, फाड़ दिया। अब शर्ट फट गया तो मानो हृदय में, यहां पर हृदय फट गया। अब शरीर को कुछ नहीं हुआ है, वो कांटा शरीर में नहीं चुभा, केवल शर्ट में चुभा, परंतु उस शर्ट से आसक्ति के वजह से फिर वो भय कि अब क्या होगा। 1000 रुपए का ये शर्ट था, अब वही 1000 रुपए का शर्ट यदि दुकान पूरी जल जाए उस शर्ट की खरीदने से पहले, तब क्या लगता है? बहुत बुरा हो उसके साथ। परंतु यदि हमारे साथ केवल वो शर्ट थोड़ा सा कोना फट जाए, मतलब पूरा आसमान सर पर टूट पड़ा ऐसा हो गया जैसे, तो ये मानसिक प्रकार का एक भय रहता है जो हमारे शरीर से संबंधित नहीं, परंतु मन से हम ये सारे भय उत्पन्न करते हैं। जैसे कई बार लोग आजकल ये डरावनी पिक्चरें देखने जाते हैं, भूत प्रेत की पिक्चरें। अब ये भूत प्रेत की पिक्चरों में वो स्क्रीन पर कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने इस प्रकार का माहौल बना दिया। और आजकल तो इस प्रकार के थिएटर हैं कि चारों तरफ से लोग आते रहते हैं, वो स्क्रीन चारों तरफ रहता है, वो क्या बोलते हैं, आईमैक्स, 3D। हम लोग रोम में थे, वहां पर रोमन हिस्ट्री एक थिएटर में दिखाई जा रही थी, 5D। 5D का अर्थ है कि वहां पर आप बैठे हुए हो सीट पर और सामने से कोई कोई घोड़ा भागते हुए आ रहा है आपकी तरफ, तो आपका सीट हिलने लगता है। इसे कहते हैं 5D। तो मैं अचानक, मुझे लगा कि भूकंप आ गया लगता है रोम में आज। और यदि वहां पर दिखाया जा रहा था कि बरसात हो रही है, कि कोई ऐसा सीन दिखाया जहां पर बरसात हो रही, तो आपके ऊपर पानी गिरना शुरू, से 5D कहते हैं। तो उसमें हालांकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसमें कई स्त्रियां वहां पर बैठी थी, वो चिल्लाने लगी जोर से। उन्हें पता नहीं था कि 5D मतलब कि आपकी सीट हिलने लगेगी, और यदि वो ट्रेन किसी गुफा से जा रही है ऐसे टर्न लेके, तो आपका सीट भी ऐसे हो जाता है। तो कई तो वहां पर वो चिल्लाने लगी, वो स्त्रियां जो थी अंदर, उसके वजह से वो शो बंद किया गया और उनको नॉर्मल सीट पर बिठाया गया, वो जो हिलती नहीं सीट, 2D जो भी। तो भय की ये दो श्रेणियां सबसे पहले। परंतु इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार के भय बताए गए हैं। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात भयम, सर्वं वस्तुं भयम् इदं ब्रुविणाम वैराग्य एवा भयम्। समझ गए? एक एक करके हम बताएंगे कि ये 9 प्रकार के भय कौन कौन से हैं। सबसे सबसे पहला भोगे रोग भयम, कि जो व्यक्ति भोग विलास चाहता है, भोग विलास का इच्छुक है, वो हर समय रोग से डरता है। इसलिए आजकल कलयुग में ये देखा गया है कि भोग विलास के इच्छा से, रोग से भयभीत लोग योग कर रहे हैं। तो योग क्यों कर रहे हैं? योग इसलिए ताकि रोग न हो। रोग क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि भोग अच्छी से चले। इसलिए ज्यादातर आप देखोगे कि लोग चार नियमों का भी पालन कर रहे हैं आजकल, बहुत क्या बोलते हैं मराठी में, काटीकोट, काटेकोट, कटावा कोट। अच्छा अच्छा ठीक है, आप समझ गए। तो बहुत दृढ़ता से वो पालन करते हैं चार नियमों का, लेकिन किस लिए? ताकि शरीर स्वस्थ हो, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर जो भी हमारा भोग विलास बहुत अच्छी से चलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। एक अमरीकी व्यक्ति, इस अमरीकी व्यक्ति ने अपने शरीर को रोग मुक्त करने के लिए इसने नमक खाना छोड़ दी। इसका नाम था मिस्टर ब्रैग, नाम भी बड़ा विशेष था। तो इसने 40 साल तक नमक नहीं खाया, सोचिए। और इसका शरीर इतना तंदुरुस्त हो गया कि इसे 72 साल की उम्र में भी, 40 साल तक इसे कोई सर्दी, खांसी, बुखार, बाकी कोई बीमारी तो छोड़ दीजिए। तो एक दिन ये वो समुद्र में सर्फिंग करने गया। वहां पर लोग समुद्र में सर्फिंग करते हैं, जानते हैं आप सर्फिंग क्या होता है? वो एक पुट्ठा होता है, पुट्ठे के ऊपर खड़े होके, अभी हिंदी में उसे ऐसे ही समझाया जाएगा, एक पुट्ठे के ऊपर खड़े होके जो समुद्र की लहरें हैं वो लहरों के ऊपर वो तैरते हैं खड़े, से कहते हैं सर्फिंग। एक बार शिला प्रभुपाद वो अपने मॉर्निंग वॉक में उन्होंने देखा कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं। तो एक डिवोटी ने कहा, प्रभुपाद दे आर कॉल्ड सी सर्फर्स। प्रभुपाद सेड सी सर्फर्स और सी सफरर्स। तो ये व्यक्ति वो समुद्र में सर्फिंग करने गया और वो फिसल कर समुद्र के पानी में गिरा। और समुद्र का पानी कौन सा, कैसा होता है? खारा, नमकीन। तो नमकीन पानी इसके सिस्टम में गया, जो सिस्टम में 40 साल तक एक नमक का दाना नहीं था। तो इतना सा वो नमकीन समुद्र का पानी उसके सिस्टम में गया और वो 2 घंटे में खत्म। उसका उसका शरीर उस उतने नमक को भी नहीं सहन कर पाया। तो सोचिए, नमक खाकर किसी की मृत्यु हो सकती है। हम तो आए दिन नमक खा रहे हैं, लोग ज्यादा मांगते हैं, लाओ नमक लाओ और डालते हैं। और यहां पर नमक खाने की वजह से इसकी मृत्यु हुई। भोगे रोग, इसलिए देखते हैं कि डॉक्टरों का बिजनेस कलयुग में हर समय और बढ़ोतरी में रहेगा, क्योंकि कलयुग में रोग ज्यादा बढ़ते रहेंगे। एक बार एक दंपति वो डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो जो पत्नी, उन्होंने पति से कहा कि हम ये वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि वो चॉइस करते ना, आज ये पिक्चर देखने जाते हैं, वो ड्रामा, ये वाले डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर है। पति ने पूछा, क्यों अच्छा डॉक्टर है? बोला, अरे उसने पिछले साल मुझे कहा था मेरे 6 महीने खाली जीने के। तो डॉक्टर ने कहा, भरोसा का नहीं था वो। तो जो भोगी है वो हर समय भयभीत रहता है कि कहीं मुझे कोई रोग ना हो जाए। तो ये सबसे पहला भय, कुले च्युति भयम। व्यक्ति जो बहुत महान कुल में पैदा हुआ है, उनको हर समय डर बना रहता है कि कहीं हमारा कुल का नाश न हो जाए। इसे कई बार ये अक्सर बातें आपने सुनी होगी कि कई लोग बहुत गर्व करते हैं अपने कुल के ऊपर, अरे हम राजघराने के हैं, राजपूत घराने के हैं, ब्राह्मण घराने से हैं और शादी उसी घराने में होनी चाहिए ताकि वो घराना बढ़ता रहे बढ़ता रहे। परंतु शास्त्र पढ़िए, शास्त्र में कौन सा घराना हम सबके लिए बताया गया है? कलौ शूद्र संभवा, जन्मना जायते शूद्र। सब जन्म से एक ही घराने से पैदा हुए हैं शूद्र। संस्कारात भवे द्विजा, फिर संस्कार से हो सकता है कि कुछ उसमें वृद्धि हो। तो जो ऊंचे कुल में है उनको उसका भय है कि कुल से च्युत न हो जाए। तत्पश्चात वित्ते नृपालात भयम, कि जो बहुत बड़ा राजा है जिसके पास बहुत धन है, वित्तवान, जो बहुत वित्त जिसके पास है, वो व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है कि कहीं ये धन मुझसे कोई छीन न ले जाए। एक बार एक व्यक्ति वो बता रहा था अपने एक मित्र को कि मैं इतना धनवान था, करोड़पति था एक जमाने में, और जैसे ही मैं अब करोड़पति से रोड़पति हुआ तो मेरे आधे मित्र मुझे छोड़कर चले गए। तो इसने पूछा, आधे और बाकी आधे? उन्हें पता नहीं अभी तक। तो एक व्यक्ति बहुत जो धन अर्जित कर लिया है, तो कई बार बहुत धन अर्जित करने के वजह से नींद नहीं आती कि कोई चुरा ना ले जाए, और जिसके पास धन नहीं उसे नींद नहीं आ रही कि धन कब मिलेगा। तो वित्ते नृपालात भयम, चौथा भय माने दैन्य भयम। ये एक भय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में भी डाला कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय इस प्रकार की बातें बोल रहा है कि मैं भीख मांगूंगा, भीख का कटोरा हाथ में लेके, अरे तुम्हारे हाथ में तो गांडीव और धनुष बाण ये सब शोभा देते हैं, क्या भीख का कटोरा? और फिर भगवान ने कहा कि जो एक क्षत्रिय का मान रखे है उसके लिए रणभूमि छोड़कर जाना ये मृत्यु से भी ज्यादा अपमानजनक है। फॉर अ पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहे कि ये मत समझना कि तुम जब रणभूमि छोड़कर जाओगे तो ये दुर्योधन, ये कर्ण, दुशासन, ये सब तुम्हारा गुणगान करेंगे माइक लेकर। कोई गुणगान नहीं करने वाले, ये तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। तो इसलिए अपना क्षत्रिय मान तो रखो, उसके लिए लड़ो। ये चौथा भय। इसके पश्चात बले रिपु भयम, एक व्यक्ति जिसके अंदर बल है वो हर समय शत्रुओं, शत्रु पक्ष से भयभीत रहता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जिनके अंदर ज्यादा शारीरिक बल नहीं वो ज्यादा दूसरे किसी पक्ष से इतना भयभीत नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझसे आएगा भी तो कौन लड़ने के लिए। परंतु थोड़ा भी कोई शरीर बन जाए किसी का, और कई बार लोग ये व्यायामशाला जा जाकर अपना शरीर बनाते हैं, वहां जाने के बाद फिर जैसे वो बाहर निकलते हैं तो सबकी तरफ देखते हैं कि कई बार वो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई कुछ बोले उनको, ताकि वो फिर थोड़ा जो जो उठाया है वो उनके ऊपर उतारे। तो एक जो बलवान व्यक्ति है वो हर समय किसी रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, शत्रु से भयभीत। रूपे जराया भयम, सारी दुनिया डोल रही है इसके ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा रूप, इतना सुंदर रूप, और खुद ही बोलते हैं खुद का रूप बहुत सुंदर है, और इतना सुंदर रूप कहीं इसमें जरा, कहीं इसमें बुढ़ापा ना आ जाए। जैसे मैं बैंगलोर में एक वहां पर सेमिनार के लिए गया हुआ था, तो वहां पर एक हमारे इस्कॉन के भक्त बहुत बड़े उद्योगपति बेंगलोर के, तो उनके घर पे हम रुके हुए थे। तो एक बार ये व्यक्ति बोल रहे थे कि बहुत बड़ी समस्या है मेरी, आप यदि इसको सुलझा सकते हैं। और समस्या ये थी कि उनकी एक नौजवान लड़की, कॉलेज जाने वाली, वो कुछ खाती नहीं थी घर में। पांच पांच नौकर हैं, तीन तीन किचन है इस बंगले में, इतना कुछ है और ये कुछ नहीं खाती। तो मैंने कहा भूख नहीं लगती? अरे भूख लगती है, लेकिन खाती इसलिए नहीं कि खाएगी तो मोटी हो जाएगी, और मोटी हो जाएगी तो फिर वो जो रूप बना हुआ है वो रूप नहीं इतना सुंदर दिखेगा, इसलिए वो कुछ खाती नहीं, केवल कुछ फल, थोड़ा सा फ्रूट डाइट, और ये सारा डाइट पे है, अलग अलग प्रकार के डाइट पे। और फिर मैंने कहा तो फिर उससे काम चल जाता है, गाड़ी चलती है उससे? नहीं, अरे रात में इतनी भूख लगती है कि भूतनी की तरह घूमती है, ऐसा तो नहीं कहा? रात में उसे नींद नहीं आती, तो कभी फ्रिज से ये निकाला, कभी वो निकाला, और फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा वो जो इतनी अग्नि प्रज्वलित है उसे थोड़ा शांत कर करके ऐसा जीवन बिताया। और मुझे लगा शायद बहुत दिखने में बहुत सुंदर वगैरह होगी, तो फिर बाद में वो ब्रेकफास्ट टेबल पे ये बता रहे थे, तो फिर वो आई ब्रेकफास्ट टेबल पे, उसे देखने के बाद तो मुझे लगा कि बाप रे, बैंगन भी थोड़ा अच्छा दिखता होगा। तो सोचिए कि किसी व्यक्ति को अपने रूप के ऊपर इतना गुरूर हो सकता है कि बेचारा बैंगन भी शर्मा जाए, वो भी वो भड़तू से पहले बनाया हुआ। तो रूपे जराया भयम, कि जिसको रूप का बहुत अपना घमंड है, वो हर समय भयभीत वो व्यक्ति रहता है कि कहीं बुढ़ापा ना आ। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा सुंदर नहीं होते वो ज्यादा शांति प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा शांति रहती है, और जो ज्यादा सुंदर रहते हैं उनके अंदर ज्यादा अशांति रहती है कि कहीं मेरा रूप इस तरीके से वहां पर, इस जगह पर वो क्षीण ना हो जाए। इसलिए ये छठा भय, शास्त्रे वादी भयम, एक जो बहुत ज्ञानवान है, शास्त्रवादी है, वो हर समय दूसरे शास्त्रवादी से भयभीत रहता है। जैसे कि एक बार एक ये बंगाल की कथा प्रभुपाद कहा करते थे कि बंगाल में एक ऐसा शास्त्रवादी था जो हर गांव में जा जाकर अपने शास्त्र वचन से हराता था बड़े बड़े दिग्गजों को। तो एक गांव में वो गया और ये गांव ने सोचा कि हमारे यहां पर तो कोई शास्त्र जानता ही नहीं, तो कौन लड़ेगा? तो ये व्यक्ति, ये विद्वान किया क्या करता कि विजय पत्र जो है वो साइन करा लेता वहां के मुखिया से। तो वहां का एक किसान सा था वो, साधारण सा गांव वाला, उसने कहा कि नहीं मैं लड़ता हूं इसके साथ। तू खेती करने वाला किसान, तुम्हें तो किताब सीधी कैसे पकड़नी वो भी नहीं मालूम, ये इस विद्वान, इस शास्त्रवादी से तुम अपनी विद्वत्ता करोगे? उसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने कहा पूरे गांव को बुलाओ और पूरे गांव के सामने मैं सिद्ध करूंगा कि इसे कुछ नहीं मालूम। उसने कहा ठीक है। तो पूरे गांव को बुलाया गया और फिर मंच में दोनों बैठे थे। तो इस किसान ने इस विद्वान को पूछा, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न मैं पूछता हूं, उसका उत्तर दो। तो उसने प्रश्न पूछा कि कान में जाकर पूछा कि बोलो, बंगला में मैं नहीं जानता, इसको कैसे बोलेंगे बंगला में, बोलो। तो कान में जाके उसे पूछा, उसने कहा आमी जानी ना। तो इसने फिर बोला, ने मेरे को सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोला, आमी जानी ना। आप लोगों को सुना क्या बोला इसने? तो सब गांव वाले बोले नहीं सुना, इनको नहीं सुना, अरे आमी जानी ना। तो फिर ये बोलता है देखो मेरा पहला प्रश्न बोलता है आमी जानी ना, छोड़ो जाओ भगाओ इसको यहां से। तो सारे गांव वाले फिर हाँ खिताब इसको दिया जाए कि इसने एक ही प्रश्न में हरा दिया, पहला ही प्रश्न इसे पता नहीं। तो जो शास्त्रवादी होते हैं वो भयभीत रहते हैं दूसरे शास्त्रवादी से। गुणे खल भयम्। एक जो गुणवान व्यक्ति होता है वो किसी खल व्यक्ति के साथ अपना संपर्क नहीं रखना चाहता, उससे भयभीत रहता है। अच्छी बात है। और अंततः काये कृतांतात भयम्, कि हरेक मनुष्य ये काया का अंत न हो, मृत्यु, सभी मृत्यु से भयभीत हैं, क्योंकि जब तक ये शरीर बना रहेगा तब तक रूप, तब तक मान, तब तक वित्त, तब तक बल, और इसलिए हर एक व्यक्ति अपने मृत्यु से भयभीत है। इसलिए कपिल मुनि तीसरे स्कंद में कहते हैं, मदभयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मदभयात वर्षतिंद्रो दहत अग्निर मृत्युश्चरति मदभयात। कपिल मुनि कहते हैं कि इस पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है वो मेरे भय के वजह से हो रहा है। वायु बह रही है मेरे भय के वजह से, सूर्य तपती हुई अपनी प्रकाश, अपना प्रकाश सूर्य दे रहा है मेरे भय के वजह से, इंद्र वर्षा कर रहे हैं मेरे भय के वजह से, और मृत्यु सबके ऊपर अपना दावा दे रही है मेरे भय के वजह से। तो ये नौ प्रकार के भय हुए। अब इस भौतिक संसार को पवर्ग कहा गया है। ये पवर्ग क्या है? पांच वर्ग, जैसे संस्कृत के व्याकरण में अलग अलग वर्ग होते हैं, तो पांच वर्ग हैं। और इस भौतिक संसार के जो पांच वर्ग है इसके विषय में कहा गया है। सबसे पहले प, प का अर्थ है परिश्रम, और दूसरा वर्ग है फ, कि जब परिश्रम होता है तो फेन निकलता है, जैसे जानवरों में कभी देखा होगा, आजकल इंसानों में भी देखा जाता है, जानवर कम फेन निकालते हैं, इंसान ज्यादा निकालते हैं, खून पसीने की कमाई है मेरी, खून पसीना फेन की कमाई। और फिर उसके पश्चात ब, ये तीसरा वर्ग है बंधन, तत्पश्चात भ, भय, क्योंकि इतना सब कुछ करने के पश्चात यदि बंधन है इस भौतिक संसार में तो उसे कहेंगे भय, और म है अंततः मृत्यु। तो इसे कहा है पवर्ग। इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार आत्म साक्षात्कारिक व्यक्ति को अपवर्ग, उस पथ को अपनाना है, अपवर्ग इसका विपरीत। तो इसमें भय, इसकी श्रृंखला बताई गई है। अब भय के विषय में यदि हम और गहराई से देखें तो भय का कारण होता है संशय एवं आसक्ति, कि जब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में संशय हो तो भय होता है, और जब किसी के प्रति बहुत अति आसक्ति है और वो व्यक्ति यदि हमारे जीवन से खो जाए या कोई वस्तु हमारे जीवन से खो जाए तो आसक्ति के कारण भय होता है। तो संशय के कारण भय होता है और आसक्ति के कारण भय होता है। अब संशय को यदि आप लो तो संशय परिणित होता है अविश्वास, और फिर आसक्ति, कोई बता सकेगा? अंधविश्वास। कि आसक्ति किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अंदर अंधविश्वास के वजह से होती है। भौतिक आसक्ति हम कह रहे हैं, भगवान के प्रति आसक्ति वो नहीं। तो ये एक मैप है जहां पर, या एक ग्राफ है, एक चार्ट है जहां पर आप देखोगे कि कैसे भय की दो श्रेणियां हैं, संशय से और आसक्ति से उत्पन्न हुआ भय, अविश्वास और अंधविश्वास। अब यहां पर ये जो श्लोक हमने आज लिया, याद है कौन सा श्लोक लिया था? सघोषो धार्तराष्ट्रानाम, इस श्लोक को हमने लिया। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि जैसे ही ये दिव्य शंख का नाद हुआ तो धार्तराष्ट्रां धृतराष्ट्र के पुत्रों में हृदयानि विदारयत, विदीर्ण हुआ उनका हृदय। तो भय और सुरक्षा दोनों भावनाओं का अनुभव हुआ। पांडु पक्ष वो सुरक्षा का अनुभव किए और कौरव वो भय का अनुभव किए। तो हम देखेंगे कि कई बार ये जो भय और सुरक्षा है ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है और अलग अलग तरीके में भय और सुरक्षा का अनुभव अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यदि हम किसी पदार्थ को लें, तो किसी पदार्थ को यदि हम लेंगे तो उसमें आप देखोगे कि पदार्थ एक ही है परंतु किसी और स्थिति में वो एक पदार्थ किसी के अंदर भय उत्पन्न करता है और वही पदार्थ किसी के अंदर सुरक्षा उत्पन्न करता है। कोई उदाहरण आप देख सकते हैं? नहीं नहीं पदार्थ वो उदाहरण हम लेंगे आगे हम। हाँ बोलिए। हाँ चीनी क्या उसको बताइए। अच्छा हाँ अच्छा उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति को डायबिटीज था तो उसको डॉक्टर ने कहा, क्या कहेगा डॉक्टर, मीठा खाना बंद करो। लेकिन वो व्यक्ति उसने कहा कि मैं बाकी सब मीठा खाना, वो मेरा रोज एक मोतीचूर का लड्डू, मेरा एक एक लड्डू। बोला बिल्कुल नहीं, अरे तुम मोतीचूर के लड्डू खाओ तुम चूर चूर हो जाओगे। उसने कहा कि एक एक लड्डू, मैं रोज पांच तो खाता हूं। पांच खाते हो? नहीं एक ही खाऊंगा खाली। तो डॉक्टर ने कहा आधा आधा खाओ। तो देखा कि फिर वो एक महीने बाद आया और उसका डायबिटीज शुगर लेवल कम ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने पूछा तुम कितना लड्डू? आधा लड्डू खाता हूं। तो आधा लड्डू कैसे खाता था? वो इतना बड़ा लड्डू बनाता था और उसको आधा करता था। तो डॉक्टर ने बोला आधा लड्डू खाना। ये मैं किसी को आइडिया नहीं दे रहा परंतु ये उदाहरण अच्छा है कि वही चीनी डायबिटीज पेशेंट के लिए भय और जो स्वीट प्रेमी है उसके लिए सुरक्षा। और कोई उदाहरण? हाँ बारिश। किसान के लिए बहुत सुरक्षा की एक वस्तु है बारिश, परंतु एक जिसने जैसे कि छतरी का व्यापार जिसने चालू किया है, तो जिसने छतरी का व्यापार चालू किया है उसके लिए बारिश आ जाए तो उसके लिए अच्छी बात है, परंतु जिसने वो क्या बोलते हैं सनगॉल सनग्लासेस उसका धंधा चालू किया है तो उसके लिए बारिश आए मतलब सन नहीं। जैसे कि कई बार आप देखोगे कि मान लीजिए आप लोग सब सेलफोन यूज करते हैं, सेलफोन को लीजिए कि आप यदि किसी की प्रतीक्षा में हैं, किसी के कॉल की प्रतीक्षा में हैं और वो व्यक्ति आपका मित्र है तो वही रिंगटोन आपके करणों के लिए बहुत मधुर रहेगा। और यदि आपको पता है कि इस समय किसका फोन आने वाला है तो वही रिंगटोन अब वो भय उत्पन्न कर देगा। रिंगटोन वही है परंतु कुछ अलग स्थिति में वो रिंगटोन आपके अंदर या तो सुरक्षा उत्पन्न करेगा या फिर भय उत्पन्न करेगा। ऐसे तो बहुत से उदाहरण हम ले सकते हैं परंतु यहां पर देखिए कि पदार्थ एक ही है परंतु अलग समय अलग स्थिति में भय या सुरक्षा। व्यक्ति एक ही व्यक्ति किसी के लिए भय उत्पन्न करता है, किसी के लिए सुरक्षा। हवलदार, हमारे क्या बोलते हैं उसको मराठी में, हवलदार बोलते हैं ना, हवलदार, पुलिस का जो हवलदार है उसको जब चोर देखता है तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है, और जब एक ऐसा नागरिक जो सारे कानून को पालन करता है वो जब हवलदार को देखता है तो उसके अंदर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, सुरक्षा के लिए होने चाहिए, सुरक्षा के लिए हैं वो। बंबई में एक बार ऐसा हुआ कुछ 10-15 साल पहले कि सारे पुलिस वाले स्ट्राइक पर चले गए, तो वहां पर जो क्राइम रेट कम हो गया, सारे जुर्म कम हो गए, क्योंकि उनको सबको सिक्योरिटी पुलिस से मिलती थी और वो स्ट्राइक पे हैं, इसलिए वो लोग डर रहे थे बाहर आकर किसी की जेब काटने के लिए या किसी को कुछ कुछ लूटने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी थी पुलिस ही स्ट्राइक पे। तो पुलिस को देखकर साधारणतः एक जो चोर है वो डरेगा और दूसरा सुरक्षा का अनुभव करेगा। स्थिति, यदि हम किसी एक स्थिति को लें तो वही एक स्थिति किसी के लिए भय उत्पन्न कर सकती है, वही स्थिति किसी के लिए सुरक्षा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत यशस्वी बन गया, फेमस, तो कई बार वो यशस्वी बनने के वजह से भयभीत हो जाता है, और कई व्यक्ति यशस्वी नहीं है इसलिए भयभीत है कि कोई जानता ही नहीं मुझे, तो कई बार लोग गलत काम करते हैं, अरे कम से कम पेपर में तो नाम आएगा, थोड़ा तो चाहे अपयश हो या यश हो किसी ना किसी प्रकार से तो कुछ तो यश मिलेगा। तो यदि कोई उस स्थिति में है तो उस एक स्थिति के वजह से किसी के अंदर भय, किसी के अंदर सुरक्षा। और स्थान, एक स्थान परंतु किसी के लिए भय वो स्थान उत्पन्न कर सकता है और किसी के लिए सुरक्षा। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल, जिसने पढ़ाई की है अच्छी से उसके लिए वो एग्जामिनेशन हॉल सुरक्षा की जगह है, और जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उसके लिए वो एग्जामिनेशन हॉल मानो कि किसी भूत प्रेत का खंडर, उसके अंदर वो अंदर प्रवेश कर रहा है, और जैसे ही वो एग्जामिनर आता है सामने तो सबसे बड़ा भूत वही लगता है उसे, और वो क्वेश्चन पेपर, वो भूत के डायलॉग फिर। तो एक स्थान इस प्रकार, और समय, समय को यदि हम लें तो ये उदाहरण मृत्यु का, जो समय, मृत्यु का जो समय है एक भक्त के लिए, मृत्यु का समय एक भक्त उल्लासित होता है कि अब यह समय आ गया है कि मैं इस शरीर को त्याग कर भगवान के आध्यात्मिक संसार में जाने वाला हूं, और वही मृत्यु की घड़ी, मृत्यु का समय एक भौतिकतावादी मनुष्य के लिए सबसे भयभीत स्थिति या समय होती है। इसलिए ये उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे कि बिल्ली का जो मुख है वो बिल्ली का जो बच्चा है और चूहा, मुख एक ही है परंतु चूहे के लिए वो मृत्यु के समान, परंतु बिल्ली के बच्चे के लिए पूर्ण सुरक्षा। यदि आपने देखा होगा बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख से उठाकर सुरक्षित स्थान में रखती है, और वही मुख से चूहे को पकड़ती भी है। तो एक भक्त के लिए वही मृत्यु और एक अभक्त के लिए वही मृत्यु, परंतु भक्त के लिए कैसे है, जैसे बिल्ली के बच्चे के लिए अपनी मां का मुख, और एक अभक्त के लिए जैसे चूहा बिल्ली के मुख की तरफ देखता है। इसलिए जब रामानुजाचार्य वो अपना शरीर त्याग रहे थे, महान आचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय के, तो सारे भक्त आकर वो विलाप कर रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई विलाप तो मुझे करना चाहिए, तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्योंकि तुम लोग यहां पर रहने वाले हो और मैं जा रहा हूं आध्यात्मिक संसार में, तो मुझे तुम्हारे लिए विलाप करना चाहिए कि तुम लोग बेचारे और इस भौतिक संसार में तुमको दिन काटने होंगे। इसलिए जब एक जैसे भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा तो सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा की, और इसलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जब कोई भक्त अपना शरीर त्यागता है तो उसे विरह उत्सव कहते हैं, उत्सव कहा जाता है उसे। उत्सव क्यों? और विरह उत्सव कहा जाता है कि विरह इसलिए कि अब इस भक्त का संग नहीं मिल पाएगा, और उत्सव इसलिए कि अब ये भक्त भगवान के आध्यात्मिक संसार में जा रहे हैं, तो उसका उत्सव मनाया जाता है। इसलिए जब वैष्णव हमारे सिद्धांत के अनुसार जब कोई भक्त अपना शरीर त्यागता है तो कीर्तन होता है जोरदार और फिस्ट बनता है। अब बाहर की दुनिया में ये सब चीजें कोई कहेगा कि आप लोग सब पागल हो, हालांकि कई बार तो लोग करते हैं, क्योंकि किसी से पिंड छुटाना है तो फिर उसका आनंद मनाते हैं कि हाँ चलो, फिर उसमें केवल उत्सव होता है, विरह उत्सव नहीं होता। तो यहां पर देखिए समय वही है, मृत्यु का समय, परंतु एक भक्त के लिए और एक अभक्त के लिए इन दोनों में अंतर क्या है। इसलिए निर्भयता के कुछ उदाहरण यदि हम शास्त्रों में देखें तो समझ में आएगा कि भगवान के संपर्क में जो जो आ जाए उसके अंदर ये हृदयानी वदारत हो ही नहीं सकता, बल्कि अभयता और निर्भयता। सबसे पहला उदाहरण है प्रहलाद महाराज, कि प्रहलाद महाराज को शारीरिक रूप से मार डालने की कोशिश हिरण्यकश्यपु ने की, और वो भी साधारण व्यक्ति नहीं, हिरण्यकश्यपु जो सबसे बड़ा खूंखार राक्षस उस समय का उसने, परंतु प्रहलाद महाराज निर्भय तरीके से। हालांकि एक एक व्यक्ति का यदि हम विश्लेषण करने जाएं तो अगले बुधवार तक आप लोगों को यहीं पर रहना होगा, इसलिए मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता। तो प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इनकी कथा भी हम जानते हैं कि दुर्वास मुनि, वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने वो एक राक्षस उत्पन्न किया अपने बालों से, बालों एक बाल को फेंक कर दुर्वास मुनि ने राक्षस उत्पन्न किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, परंतु अम्बरीश महाराज वो बिल्कुल निडर निर्भय हाथ जोड़े हुए भगवान को प्रार्थना किए, और भगवान स्वयं अपना सुदर्शन चक्र भेजकर अम्बरीश महाराज की रक्षा की। भीष्म पितामह के विषय में हमने पिछले बुधवार को ही बताया, किसे याद है इस संदर्भ में निर्भयता। भीष्म पितामह जानते थे कि उनकी मृत्यु कैसे होने वाली है, और उन्होंने अर्जुन को कहा कि शिखंडी को सामने रखो, और बिल्कुल निडर कि हां ये शिखंडी के वजह से मेरी मृत्यु होने वाली है, और अर्जुन ही है जिसके बाणों से मैं मर सकूंगा। तो ये भीष्म पितामह की निर्भयता। परीक्षित महाराज जानते, परीक्षित महाराज कि वो तक्षक सर्प 7 दिन बाद आकर मुझे डसने वाला है, परंतु परीक्षित महाराज जब भागवत का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि चाहे अब वो तक्षक हो, भक्षक हो, जो भी हो, वो किसी भी समय आ जाए, मुझे अब कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और वृत्रासुर की कथा है 6 स्कंद में श्रीमद भागवत में कि वृत्रासुर ये जानते थे कि इनकी मृत्यु इंद्र द्वारा ही लिखित है, और इंद्र को ये वज्र मिला हुआ है मेरी मृत्यु करने के लिए, और वृत्रासुर ने, और इंद्र भयभीत हुए थे कि कैसे चलाऊं, कि वृत्रासुर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस वृत्रासुर के अंदर देखकर इंद्र वो कांपने लगे। तो वृत्रासुर इंद्र को कहने लगे, अरे इंद्र, तुमको भगवान विष्णु का वरदान मिला है और तुम्हें विश्वास नहीं उनके वरदान के ऊपर, भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि तुम मुझे मारोगे, मारो, मुझे भगवान विष्णु के वरदान पर ज्यादा विश्वास है तुम्हारे से ज्यादा। और उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हालांकि वृत्रासुर एक आसुरिक योनि में थे और इंद्र एक दैवी योनि में, परंतु यहां पर यह देखा जा रहा है कि वृत्रासुर एक दैव है और इंद्र जो कि विश्वास नहीं रखे भगवान के ऊपर, वो आसुरी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। तो वृत्रासुर बिल्कुल निर्भय निडरता से, और अंततः शील प्रभुपाद जिनका नाम बचपन से क्या था, अभय, अभय चरणारविंद। इसलिए शील प्रभुपाद इनके विषय में यदि हम कहें कि इन्होंने अभयता, निर्भयता, निडरता कैसे दिखाई, 70 वर्ष की उम्र में उस वृद्ध अवस्था में भारत को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने पश्चिम देश में, और वो भी बिना किसी पैसे लिए, कोई जान पहचान नहीं, वहां पर जाकर उन्हें क्या बताने, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना, ये सब नहीं करना, और हरे कृष्ण महामंत्र जपना, ये सारी चीजें, और बहुत बार प्रहार हुए श्रील प्रभुपाद के ऊपर शारीरिक रूप से। तो ये सब कुछ देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद को जो नाम मिला वो उन्होंने सिद्ध किया, और वो सिद्ध कैसे किया, गोविंद चरण, भगवान श्री गोविंद के चरण की शरण ली, इसलिए अभय चरणार विंदरे। और हम इस श्लोक पर भी चर्चा करने वाले थे, मैं देखा सब लोग हंसी छुट गई सबके चेहरे से, आज नहीं करेंगे, थोड़ी देरी हो गई, तो अगले बुधवार को अब संजय धृतराष्ट्र को एक और संकेत, कुछ और संकेत, एक और नहीं, कुछ और संकेत इस श्लोक के द्वारा दे रहे हैं। और इस श्लोक में अब संजय धीरे धीरे धृतराष्ट्र को यह कह रहे हैं कि अब सभी पांडवों में जो सबसे प्रसिद्ध हैं अर्जुन, वो बोलना शुरू करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर इस श्लोक में कहा गया है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहम महीपते, कि उन भगवान श्री ऋषिकेश को उनके भक्त अर्जुन ने कौन से वाक्य कहे। मानो संजय अब धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि अर्जुन अब कुछ बोलने वाले हैं, उनका डायलॉग शुरू होने वाला है। तो क्योंकि अब अर्जुन जिनके लिए पूरी गीता सुनाई गई वो बोलने वाले हैं, इसलिए हम चुप हो जाते हैं अभी के लिए, ताकि हम विस्तार से सुन सकें कि उन अर्जुन ने अब भगवान श्री ऋषिकेश से क्या कहा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई एक प्रश्न, सारे भय दूर हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय।